समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में आपका हार्दिक स्वागत है। आधे घंटे के परिक्रमा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर। एज वी बिगिन टुडेस प्रोग्राम, वी वांट टू टेक अ मोमेंट टू सेंड आवर थॉट्स एंड हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज एंड लव्ड वंस ऑफ दोस अफेक्टेड बाय द ट्रेजिक एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश इन अहमदाबाद यस्टरडे। It's a difficult time and our hearts are with those who have lost their dear ones. To the families who have lost their loved ones, our hearts ache with you. So let's begin with the headlines, Divya.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
Identified bodies of plane crash been handed over to the relatives after postmortem.
इसराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाला कोई भी कदम न उठाने का आग्रह किया।
इंडियन एम्बेसीज इशू एडवाइजरीज टू इट्स नेशनल्स इन बोथ कंट्रीज टू स्टे विजिलेंट। 16 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑफ एयर इंडिया अफेक्टेड एमिड ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट।
और मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया। कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री से अधिक। अगले तीन दिनों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का भी अनुमान।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Prime Minister's visit to Ahmedabad Civil Hospital and plane crash site and International Albinism Awareness Day. Well, Prime Minister Narendra Modi visited the Ahmedabad Civil Hospital in Gujarat this morning and met those injured in Air India plane crash, which claimed lives of 241 people. Later, in a social media post, the Prime Minister said the country is devastated by the air tragedy in Ahmedabad. He said the loss of so many lives in such a sudden and heartbreaking manner is beyond words. He extended condolences to the bereaved families.
बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। वाकई में ये एक ऐसी क्षतिपूर्ति है जो कि भरी नहीं जा सकती, अपूरणीय क्षति है ये। श्री मोदी ने कहा कि सरकार उनके दर्द को समझती है और ये भी जानती है कि उनके पीछे जो खालीपन रह गया है उसे आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और वर्तमान में स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बाद में श्री रमेश ने अपने साथ हुए विनाशकारी अनुभव को साझा किया और बताया कि वे कैसे बच गए।
विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना।
सर ने पूछा कि क्या कैसे हुआ तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब।
विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे।
और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था, को मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूं। लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूं। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला मैंने, वो ट्राई किया वहां से निकल सकते, वहां से मैं निकल गया। वहां से मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे बच्चे अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी।
अच्छा, थोड़ा सा बता पाए जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ?
टेक ऑफ के बाद एक मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया हो। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस्ट बोलते हैं क्या रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था
वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का।
हाँ, हॉस्टल में और सब सामने सब।
ये फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे?
नहीं, मेरा मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब।
आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल?
हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में।
अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है, अभी कैसा फील कर रहे हैं आप?
इलाज बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं।
Yes, and Mr. Modi also visited the plane crash site and said, "The scene of devastation is saddening." In a social media post, the Prime Minister said he met officials and teams working tirelessly in the aftermath. Mr. Modi said his thoughts remain with those who lost their loved ones in this unimaginable tragedy.
बाद में श्री मोदी ने अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि विमान दुर्घटना में पहचाने गए शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अब तक 6 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
Yes, Divya, and when fate takes a sharp, tragic turn, even the smallest twist of chance can mean the difference between life and death, and this was witnessed in yesterday's tragic mishap. We have a report.
Bhumi Chauhan, a resident of Bharuch in Gujarat, became one of the few spared by such a twist. She missed Air India flight which crashed yesterday. Bhumi's story and those of a handful of others who were meant to be on that doomed flight are haunting reminders of how close they came to sharing the same fate and how thin the line between tragedy and survival can be. Ms. Bhumi shared that she arrived at the check-in gate 10 minutes late due to traffic in Ahmedabad and was not allowed to board the plane.
एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, तभी हमने न्यूज देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड मतलब मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई, लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है।
However, others were not so lucky. For many, it was meant to be the start of something joyful. A doctor couple, full of hope, were beginning a new chapter as a family in the UK. Their dreams would end in tragedy on this very flight. A 35-year-old woman was returning to the UK after leaving her daughter with her parents in Vadodara. She would never make it home. Two sisters, excited for their vacation in London, boarded with smiles that would never see another day. They all boarded the flight, unaware that this takeoff had no landing. Swati Rakheja, Akashwani News.
घातक बोइंग 787-8 विमान कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 12 चालक दल के सदस्यों सहित 241 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाला यह विमान हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक आवासीय परिसर में जा गिरा।
Yes, and now we move on to a second topic in a Dateline section, which is the International Albinism Awareness Day. Well, Divya, today is the International Albinism Awareness Day. Albinism is a rare, non-contagious, genetically inherited difference present at birth. In almost all types of albinism, both parents must carry the gene for it to be passed on, even if they do not have albinism themselves. And the condition is found in both sexes, regardless of ethnicity, and in all countries of the world.
बिल्कुल, आपने अभिषेक सही कहा। एल्बिनिज्म एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, और एल्बिनिज्म की वजह से बालों, त्वचा और आंखों का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका कारण है मेलानिन नामक पदार्थ के उत्पादन की कमी, जिससे सूर्य और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है, और यही कारण है कि एल्बिनिज्म से पीड़ित लगभग सभी लोगों में दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं और उनमें त्वचा कैंसर विकसित होने का खतरा रहता है।
Well, numbers vary and it is estimated that in North America and Europe, one in every 17,000 to 20,000 people have some form of albinism. And the condition is much more prevalent in sub-Saharan Africa, with estimates of 1 in 1,400 people being affected in Tanzania, and prevalence as high as 1 in 1,000 people reported for select populations in Zimbabwe and for other specific ethnic groups in southern Africa.
और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय है हमारे अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा करें, हमारे जीवन को सुरक्षित रखें। ये दिवस जागरूकता, जांच और सनस्क्रीन की उपलब्धता के माध्यम से एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों में त्वचा कैंसर को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों में त्वचा कैंसर का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। एल्बिनिज्म का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सनस्क्रीन लगाकर बाहर सूर्य की रोशनी में हानिकारक किरणों से बचा जा सकता है, और साथ ही त्वचा कैंसर की जांच से उपचार तक पहुंचकर जितनी भी संभावित मौतें हैं वो रोकी जा सकती हैं।
Yes, Divya, and the theme invites us to celebrate the strides made within the movement with a renewed commitment for the future, highlight the tireless efforts of albinism groups from around the world, reflect on the continued legal policy and practical changes still required to ensure the full and equal enjoyment of rights by persons with albinism.
एल्बिनिज्म की हम बात कर रहे हैं अभिषेक, और एल्बिनो जो ये एल्बिनो से बना और एल्बिनो से एल्बस बना, और एल्बस का मतलब होता है सफ़ेद। इसी वजह से इस पूरे जो एक तरीके से जो भी एल्बिनिज्म इसको कहा गया, और कई देशों ने मुफ्त या रियायती दरों पर सनस्क्रीन और सूर्य से सुरक्षा देने वाले कपड़े उपलब्ध कराकर त्वचा संबंधी सेवाओं तक पहुंच और त्वचा कैंसर की जांच, पहचान और उपचार तथा एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को सूर्य से सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की पहल की है। और अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें कि हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास क्या विशेष है। तो सबसे पहले चलते हैं सुदूर पोर्ट ब्लेयर। सुदूर दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 9 जून को अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए, और इन 11 वर्षों के दौरान की गई कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने विभिन्न मंत्रियों द्वारा दौरा किया जा रहा है, और इसी क्रम में केंद्रीय जलमार्ग, जहाजरानी और बंदरगाह राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 11 वर्षों के दौरान जो विश्व गुरु का नमूना पेश किया वो पूरी दुनिया को मालूम है। सरकार के इन 11 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो नीति अपनाई गई है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्री इन दिनों देश के विभिन्न भागों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर द्वीप समूह दौरे पर आए। उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, साथ ही द्वीप समूह की विकासीय गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जो इन 11 वर्षों की उपलब्धियों में शामिल रहे। श्री शांतनु ने बताया कि सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णय के साथ इन 11 वर्षों में देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। श्री ठाकुर ने ग्रेट निकोबार में बन रहे शिपमेंट पोर्ट के बारे में भी बताया। द्वीप समूह की आबादी पूरी तरह जहाज पर निर्भर है और जहाज मौसम पर, ऐसे में किस तरह की योजनाएं हैं, इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपने पिछले दौरे का विवरण दिया और बताया कि उन्होंने इन सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया है, जिसमें सबसे प्रमुख जेट्टी का निर्माण करना शामिल है। इसे मंत्रालय में भेजा जा चुका है और ये कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने सरकार की ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे विकासीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिस जिससे जन जन तक फायदा पहुंचा है और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से मैं पूजा सिंह।
In Kerala, the state government has given a nutritious makeover in Anganwari meals with a variety of dishes aiming at improving children's health. More from a correspondent.
The Kerala State Health Minister Veena George last week unveiled a revised menu for Anganwari children in the state. The new menu offers more delicious, diverse and nutritious meals aiming to improve children's health by reducing sugar and salt while increasing protein-rich contents. The minister said that for the first time a unified menu will be implemented in the state. The revised menu covers breakfast, lunch and general feeding, featuring a variety of dishes ranging from egg biryani, pulao, dal payasam, soya dry curry and nutri laddu on different working days. Additionally, milk and eggs, which were previously served twice a week, will now be provided thrice a week. The menu also provides information on the ingredients as well as the nutritional values for each dish. The model food menu was unveiled during the state-level inauguration of the Anganwadi reopening event in Pathanamthitta. Earlier this year, Veena George had assured to revise the menu after a video of a child named Shanku requesting biryani and chicken fry instead of upma at an Anganwadi went viral on social media. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
Jalandhar is famous for sports industry the world over, and the district has not only produced hockey players who have made the name, but it is also manufacturing world-class sports items. We have more from a Jalandhar correspondent.
पंजाब का जलंधर शहर खेल के साजो सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा है, फिर चाहे वो हॉकी स्टिक्स हों, क्रिकेट बैट हों, या बॉल या फुटबॉल। यहाँ के खेल सामान की पहचान विश्व स्तर पर है। क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बैट भी यहीं से बनकर जाते रहे हैं। इसी कड़ी में अगस्त में शुरू होने वाले विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप 2025 के लिए रग्बी बॉल्स जलंधर से भी जा रही हैं। इससे पहले रग्बी वर्ल्ड कप 2019 और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भी रग्बी बॉल्स यहीं से गई थीं। यह स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जहां पंजाब और भारत का नाम वर्ल्ड लेवल पर कर रही है, वहीं हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है। परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। हॉकी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने एंटवर्प में मेजबान बेल्जियम को हराकर 3-2 से हराकर यूरोप दौरे में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ी सोनम ने जब चौथे मिनट में फील्ड गोल के जरिए स्कोरिंग की शुरुआत की तो भारत ने खेल में शुरुआती बढ़त हासिल की। भारत ने पहले हाफ तक अपनी 1-0 की बढ़त बनाए रखी और तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में 32वें मिनट पर लाल थंतलुंगी के गोल की बदौलत इसे दोगुना कर लिया।
Yes, and in cricket, the first session on day 3 of the World Test Championship final between South Africa and Australia has underway at Lords. In the second innings, Australia were 196 for the loss of 9 wickets when reports last came in. And moving on to some business news, the benchmark domestic equity indices today ended on a weak note, weighed down by escalating geopolitical tensions and broad-based sell-off across most sectors. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 573 points or 0.7% to close at 81,119. The National Stock Exchange Nifty 50 dropped 170 points or 0.68% to settle at 24,719.
अब आइए बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों की और उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इस कड़ी में आइए चलते हैं आजादी के सफर पर।
It was on the 13th of June 1943 that Netaji Subhash Chandra Bose arrived from Germany to Tokyo and declared his intention of ending British rule in the subcontinent. He aimed to attack the eastern regions of India, and to this end, Netaji went to Singapore on the 2nd of July. In October 1943, at the famous Cathay Cinema Hall in Singapore, Subhash Chandra Bose formally announced establishment of the Provisional Government of Free India. Netaji declared,
It will be the task of the Provisional Government to launch and conduct the struggle that will bring about the expulsion of the British and their allies from the soil of India.
The Provisional Government of Free India gave a clarion call for independence and emboldened the brave freedom fighters to rise against the then British Empire with more gusto and courage. The activities of the Indian National Army under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose shook the foundation of the British Empire.
We remember Gandhian freedom fighter Narut Nath, who was martyred on the 13th of June 1930. A resident of District Surat, Gujarat, Narut Nath took part in the Dharasana Salt Satyagraha in May 1930.
During the Salt Satyagraha in 1930, when Gandhiji decided on a raid of the Dharasana salt works, he wrote to the Viceroy, Lord Irwin, and told him about his plan. Gandhiji was arrested on the 4th of May 1930 and was detained without trial near Pune.
However, the Dharasana Satyagraha went ahead as decided and planned by Gandhiji, with Abbas Tayyibji, a 76 years old retired judge, leading the march with Kasturba Gandhi at his side. Both Abbas Tayyibji and Kasturba Gandhi were also arrested before reaching Dharasana and sentenced to 3 months imprisonment. After their arrests, the Satyagrahis continued the march under the leadership of Sarojini Naidu, who warned them,
"You must not use any violence under any circumstance. You will be beaten, but you must not resist. You must not even raise a hand to ward off blows."
The armed forces clubbed the Satyagrahis with steel-tipped lathis on the 22nd of May 1930. A large number of Satyagrahis were injured badly, including Narut Nath, who died of his injuries on the 13th of June 1930. We salute the great martyr.
We also remember independence activist Gunisi Singh, who took part in the First War of Independence in 1857. Initially, Gunisi Singh used to serve the English East India Company Army, but left it during the uprising of 1857 and took part in attacking the British establishments on various occasions. Singh also motivated his fellow sepoys to turn their arms on the British and overthrow their oppressive rule.
While fighting against the British, he was caught and charged with desertion and mutiny against the British authorities. Gunisi Singh was sentenced to transportation for life. He was sent from Bombay to the Andaman Islands in April 1858 and died there in captivity on the 13th of June 1858. We salute the great martyr.
आज भारत के जांबाज सैनिक मेजर विवेक गुप्ता की पुण्यतिथि है। करगिल युद्ध के दौरान 13 जून 1999 को तोलोलिंग टॉप में दुश्मनों के ठिकानों पर शुरुआती हमले में मेजर विवेक गुप्ता को अपनी कंपनी का नेतृत्व करने का मौका दिया गया। इस दौरान उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया। युद्ध के दौरान उन्हें 2 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने फिर भी दुश्मनों पर हमला जारी रखा। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने दुश्मन के 3 सैनिक मार गिराए, लेकिन वो इस बीच दुश्मनों के हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। विवेक गुप्ता की वीरता के चलते ही भारत ने तोलोलोंग टॉप पर विजय प्राप्त की थी। मेजर विवेक गुप्ता को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
Yes, and William Butler Yeats was born on this day in 1865. Popularly known as W.B. Yeats, he was an Irish poet, dramatist, writer and literary critic who was one of the foremost figures of 20th century literature. He was a driving force behind the Irish literary revival and along with John Millington Synge and Lady Gregory founded the Abbey Theatre, serving as its chief during his early years. He was awarded the 1923 Nobel Prize in Literature and later served 2 terms as a senator of the Irish Free State.
आज भारतीय सेना के वीर सैनिकों में से एक मेजर मनोज तलवार की भी पुण्यतिथि है। वे ऐसे वीर जवान, वीर सपूत कम ही पैदा होते हैं जो देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही वीर सपूत थे मुजफ्फरनगर के मेजर मनोज तलवार। जून 1999 को जब देश के दुश्मनों ने अपने नापाक इरादों से हमला किया, तो मनोज तलवार अपने साथियों के साथ शत्रुओं को करारा जवाब दे रहे थे। 13 जून को करगिल में दुश्मनों की ओर ढेर कर तुरटक की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराने के बाद वे शहीद हो गए। मेजर मनोज तलवार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के।
Yes, and Chris Evans was born on this day in 1981. He is an American actor. He gained worldwide recognition for portraying Captain America in various Marvel Cinematic Universe films, from Captain America, The First Avenger, 2011, to Avengers Endgame, 2019. His work in the franchise established him as one of the world's highest paid actors. Evans films altogether as a leading actor have grossed $11.4 billion worldwide, making him one of the highest grossing box office stars of all time.
आज भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस की पुण्यतिथि है। सन 1951 से मुद्रा राक्षस की प्रारंभिक रचनाएं छपनी शुरू हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आला अफसर, दंड विधान, हस्तक्षेप, कालातीत और नारकीय।
Yes, and Rajkumar Rao was born on this day in 1984. He's a versatile actor in Hindi cinema since the early 2010s. He's a recipient of several accolades, including a National Film Award, 4 Filmfare Awards, and an Asia Pacific Screen Award. In 2017, he appeared on Forbes India's Celebrity 100 list. Let's listen in to a song from one of his movies.
ओ झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में।
Yes, and after studying acting at the Film and Television Institute of India, Rao made his acting debut with an anthology film in 2010 and took on supporting roles in the films Gangs of Wasseypur Part 2, Talash, The Answer Lies Within, both 2012. He had his breakthrough in 2013 with the critically acclaimed performances in the dramas Kai Po Che and Shahid. His portrayal of lawyer Shahid Azmi in the latter won him the National Film Award for Best Actor and the Filmfare Critics Award for Best Actor. Let's listen in to a dialogue from one of his movies.
अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई। हमने कितना याद किया आपको दिल से, हाथ से, और इतने दिनों बाद आई हो आप। आपको पता है ये सब लोग आपके पीछे से आपको क्या क्या बोलते हैं?
क्या?
छलावा, चुड़ैल, पिशाचिनी, सोनम बेवफा, ठुकरा दिया तेरा प्यार, अब इंतकाम देखेगी।
और आज भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमकर की पुण्यतिथि है। वे अपने घर की दीवारों को पेंट करते थे और मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाते। उन्हें अपनी मूर्तिकला के माध्यम से उन्हें देश विदेश में बहुत सम्मान मिला। भारत सरकार ने वर्ष 1964 में मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमकर को पद्मश्री से पुरस्कृत किया था। और आज ही हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन की जयंती है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत लिखे। प्रेम धवन ने पंडित रविशंकर से संगीत और पंडित उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा ली। उन्होंने लगभग 50 फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया। और आइए सुनते हैं उनका लिखा ये गीत। और आखिरी बार प्रेम ने फिल्म अप्पू राजा के लिए लिखा। भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती
चोला। Yes, and Aaron Parry Taylor Johnson was born on this day in 1990. He's an English actor. He's known for his portrayal of the title character in Kick-Ass 2010 and his 2013 sequel, as well as the Marvel Cinematic Universe character Pietro Maximoff in Avengers Age of Ultron in 2015. As a child actor, he performed in films including Shanghai Nights 2003, The Illusionist in 2006, and Angers, Thongs and Perfects Nogging 2008. He had his breakthrough performance as John Lennon in the biopic Nowhere Boy in 2009, directed by Sam Taylor Wood, whom he married in 2012. He followed this with roles in crime thriller Savages, Anna Karenina and monster film Godzilla.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या तोमर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।